शांति। अव्यक्त मुरली 9 अप्रैल 1983। अव्यक्त बाप दादा की कुमारों से मुलाकात थी। सदा अपने को हर कदम में साक्षी और सदा बाप के साथ ही ऐसे अनुभव करते हो। जो सदा साक्षी होगा वह सदा ही हर कर्म करते हुए, हर कदम उठाते कर्म के बंधन से न्यारे और बाप के प्यारे, तो ऐसे साक्षीपन अनुभव करते हो। कोई भी कर्मेंद्रिया अपने बंधन में नहीं बांधे, इसको कहा जाता है साक्षी। ऐसे साक्षी हो। कोई भी कर्म अपने बंधन में बांधता है तो उसको साक्षी नहीं कहेंगे, फंसने वाला कहेंगे, न्यारा नहीं कहेंगे। कभी आंख भी धोखा न दे। शारीरिक संबंध में आना अर्थात आंख का धोखा खाना, तो कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे, साक्षी रहे और सदा बाप के साथी रहे। हर बात में बाप याद आवे। महान आत्माएं भी नहीं, निमित्त आत्माएं भी नहीं, लेकिन बाबा ही याद आए। कोई भी बात आती है तो पहले बाप याद आता है या निमित्त आत्माएं याद आती है? सदा एक बाप दूसरा ना कोई। आत्माएं सहयोगी है लेकिन साथी नहीं है, साथी तो बाप है। सहयोगी को अपना साथी समझना यह भूल है, धोखा है, दुख है, गलती है, स्वयं को ठगना है। सहयोगी को अपना साथी समझना यह रॉन्ग है। तो सदा सेवा के साथी, लेकिन सेवा में साथी बाप है। वो सब सेवा के साथी और सेवा में साथी बाप है। निमित्त सहयोग देते हैं। ऐसा सदा स्मृति स्वरूप हो। किसी देहधारी को साथी बनाया तो कमलेश भाई, देहधारी को साथी बनाया तो क्या? बाप का साथ छोड़ना पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा, ले डूबेगा। और आशीष भाई, किसी देहधारी को साथी बनाया तो कौन? और इधर से आज किसी देहधारी को साथी बनाया तो
बाप साक्षी हो
जाएगा। बाप साक्षी हो जाएगा और
बाप की मदद नहीं
मिलेगी। बाप की मदद बंद और
राजाई खत्म।
अंत में वही याद आएगा। किसी को बोलो ना चेयर। किसी देहधारी को साथी बनाया तो उड़ती कला का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए हर बात में बाबा बाबा याद रहे। कुमार डबल लाइट है। संस्कार स्वभाव का भी बोझ नहीं, व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं। इसको कहा जाता है हल्का। जितना हल्का होंगे उतना सहज उड़ती कला का अनुभव करेंगे। अगर जरा भी मेहनत करनी पड़ती है तो जरूर कोई बोझ है। तो बाबा बाबा का आधार ले, उड़ते रहो, यही अविनाशी आधार है। अव्यक्त वाणी 9 अप्रैल 1973। कुमारों से सदा अपने को हर कदम में साक्षी और सदा बाप के साथी ऐसे अनुभव करते हो। 83। सदा अपने को, दो शब्द है, साथी और साक्षी। सदा अपने को हर कदम में साक्षी और सदा बाप के साथी। साक्षी है तो ही साथी है। डंडे की मुरली साक्षी निर्लेप और न्यारापन। अगर साक्षी है देह के भी साक्षी, देह के संबंध के भी साक्षी, तो ही संपूर्ण पुरानी दुनिया के साक्षी हो सकते हैं, और तभी बाप भी साथी है, अन्यथा नहीं। तो सदा अपने को हर कदम में साक्षी और सदा बाप के साथी ऐसे अनुभव करते हैं। जो सदा साक्षी होगा, साक्षी की क्या परिभाषा है, वह सदा ही हर कर्म करते, हर कदम उठाते कर्म के बंधन से न्यारे और बाप के प्यारे। तो ऐसे साक्षीपन अनुभव करते हो, कोई भी कर्मेंद्रिय अपने बंधन में नहीं बांधे, एक तो कर्म किया और कोई बंधन नहीं, यह है साक्षी अवस्था। कर्म किया और कर्मेंद्रिया बांधे नहीं, यह है साक्षी। ऐसे साक्षी हो, कोई भी कर्म अपने बंधन में बांधता है तो उसको साक्षी नहीं कहेंगे, फर्स्ट नहीं वाला कहेंगे, न्यारा नहीं कहेंगे। कभी आंख भी धोखा ना दे, शारीरिक संबंध में आना अर्थात आंख का धोखा खाना। तो साक्षी अर्थात कर्म किया और न्यारे हो गए, साक्षी अर्थात कर्म किया और कर्म के बंधन से न्यारे, साक्षी अर्थात कर्म किया परंतु कोई भी कर्मेंद्रिय बांधे नहीं। कर्म का भी नहीं कोई परिणाम और ना ही कर्म का जो परिणाम है उसको भी, वो भी हमें स्पर्श ना करे। ऐसी अस्पर्श की जो अवस्था है, ऐसी अनटच्ड स्टेट ऑफ द माइंड जो है, वह है साक्षी अवस्था, डिटैच्ड ऑब्जर्वर। यह भाव कि हम केवल निमित्त है, हम कुछ भी कर नहीं रहे, ऊपर से सब कुछ हो रहा है, वह सब कुछ करा रहा है, यह भी एक साक्षी का ही भाव है। उसमें भी बाबा कह रहे हैं कि कभी आंख भी धोखा न दे। सबसे हरेक कर्मेंद्रिया धोखा देती है। कल की मुरली में क्या था, ऐसा नहीं केवल आंख, हर एक कर्मेंद्रिया धोखा देती है, हर एक कर्मेंद्रिया। किसी भी कर्मेंद्रिय पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, सभी ट्रेटर है, दगाबाज। कब कौन सी कर्मेंद्रिया धोखा देते पता नहीं। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ट्रक के पीछे लिखा रहता है। तो सबसे ज्यादा उसमें से भी धोखा देने वाली कौन सी है, आंख। क्या कहा था कल आंख के बारे में बाबा ने, बहुत धोखेबाज है और गुप्त धोखेबाज है और चलायमान। अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरे की स्त्री को देखा, श्रृंगार देखा, गायन में होशियार है तो बात करूं, हाथ लगाऊ, खींचती है, बुद्धि चलायमान होती है, फिदा होते हैं, कई सारे शब्दों का प्रयोग किया है बाबा ने, वो सब जानता है। तो आंखें बहुत धोखा देती है, इसी दुश्मन की पूरी पूरी जांच करनी है, जांच रखनी है। ये भी कहा ना, यही दुश्मन है। उदाहरण दिया सूरदास का भी उदाहरण दिया, सन्यासियों का भी उदाहरण दिया। सन्यासी स्त्रियों को देखते नहीं और रखते पीछे, प्रवचन जो होता है तो सामने पुरुष पीछे स्त्रियां। तो आंखें बहुत धोखा देती है, कभी आंख भी धोखा न दे। तो क्या करना है फिर, धोखा देती है तो
कल बाबा ने बोला जांच करेंगे तो ज्यादा धोखा,
वो भी कहा है एक जगह
तो जांच करेंगे।
परंतु वो संदर्भ अगर पढ़ेंगे, वो कंटेक्स्ट जिस तरह से कहा हुआ है, वो वाक्य उसके तुरंत नीचे आता है, परंतु वो इसलिए नहीं है कि जांच नहीं करो, उसको दोबारा दोबारा दो तीन बार पढ़ो तो पता चलेगा कि वो वाक्य ऊपर का पूरा हो चुका है, यहाँ ये दूसरा वाक्य चालू हो रहा है। इसके लिए दोनों का कोई संदर्भ नहीं है कि वो है करके ये करो, परंतु कहा ऐसा ही है कि जितनी जांच करेंगे और ज्यादा धोखा देगी, परंतु संदर्भ ऊपर का खत्म हो रहा है, दूसरा वाक्य वहां नीचे चालू हो रहा है, कंटेक्स्ट दूसरा है, पर वो भाव अलग है। तो सबसे ज्यादा धोखा देती है आंख।
क्या
करना आंखों का नहीं है, ऑपरेशन आंखों का नहीं, आत्मा का करना है। आंखें केवल साधन मात्र है, देखने वाली। वो तो आंखों को कुछ करना, अर्थात आंखों को कुछ करने से कुछ नहीं होगा, इंद्रियों को काटने से कुछ नहीं होगा, आंखों को अंधा करने से कुछ नहीं, अंधा बनाने से कुछ नहीं होगा,
रिमोट तो और जगह से होते हैं।
क्योंकि जो हो रहा है देखने वाली आंख नहीं, आत्मा है। ये तो शाखा है, मात्र है। आत्म ज्ञान पर काम करना है, ना कि आंखों पर। आत्म ज्ञान जब मिटेगा तो आत्मा आत्मा को ही देखेगी। आत्मा आत्मा देह को देख रही है, अर्थात आत्मा स्वयं को भूली हुई है। आत्मज्ञान के कारण भास रहा है देह। आत्मज्ञान की स्थिति में यह देह मिट्टी मात्र है। देखना ही है तो इस देह के वास्तविक स्वरूप को देखो, क्या है यह देह। ये देह केवल मिट्टी है और कुछ नहीं। डस्ट थाउ आर्ट एंड टू डस्ट डस्ट थाउ रिटर्नेस्ट, इट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल बट ऑफ द बॉडी। मिट्टी तुम हो और मिट्टी में समा जाओगे, ये आत्मा के लिए नहीं देह के लिए कहा हुआ है। तो आत्मज्ञान को बढ़ाना है। जैसे ही आत्मिक स्थिति बढ़ेगी, स्वतः ही देह और देह का आकर्षण लोप होते जाएगा। काम आत्मा पर करना है, ना कि आंखों पर। आंखें साधन मात्र है, आंखें देख नहीं रही है, आंखें देख आत्मा देख रही है। कान नहीं सुन रहे, आत्मा सुन रही है इसके लिए। परंतु वो दूसरी एक बात है कि संयम की दृष्टि से, नासिकाग्र दृष्टि रखते हैं योगी जो होते हैं, उनकी दृष्टि नासिकाग्र होती है, किसी को ही नहीं देखते। वो एक जैसे वृक्ष जब छोटा है तो उसको संभाल की जाती है, उसकी पता नहीं कौन सा जानवर आकर उसको नष्ट कर दे। परंतु जब वो बड़ा हो जाता है, वटवृक्ष बन जाता है, तब हाथी भी बांध दो तो कुछ नहीं होगा, तब वो इतना सशक्त है। तो साधना काल में तपस्वियों के लिए, योगियों के लिए, सन्यासियों के लिए, सन्यासिनियों के लिए ये नियम और मर्यादाएं हैं, कामिनी और कांचन। तो कभी आंखें भी धोखा न दे। शारीरिक संबंध में आना अर्थात आंखों का धोखा खाना। ब्रह्मचर्य के जो नियम है उसमें यम और नियम, हर धर्म में, जैन धर्म में, हिंदू धर्म में, पतंजलि योग शास्त्र में, इन सब में इन सब का विस्तार किया गया है। देखना, बात करना, सोचना, प्रशंसा करना, मनी मन गुण गाना, पुरुष स्त्री के या स्त्री पुरुष के, ये सभी ही ब्रह्मचर्य का खंडन है। परंतु ये भी है कि केवल स्त्री या पुरुष से भागना, यह ब्रह्मचर्य नहीं है। ये तो केवल दमन मात्र है। जितना भागेंगे उतना और ज्यादा याद आएगा। इसके लिए दमन की फिलॉसफी यहाँ नहीं है। तो शारीरिक संबंध में आना अर्थात आंख का धोखा खाना। तो कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे। आंख भी धोखा देती है तो और कौन सी बात की थी कल बाबा ने, मुख। मुख क्या करता है, ये खाऊं वो खाऊं, कक का चोर तो लक का चोर। खाने पीने की वस्तु है, जब तक उस पर संयम नहीं तब तक ब्रह्मचर्य का भी पालन नहीं हो सकता है। कोई अगर सोच रहा है एक कर्मेंद्रियों को वश में करो और बाकियों को खुला छोड़ दू, आत्मवंचना है, केवल प्रवंचित कर रहा है स्वयं को, सेल्फ डिसेप्शन, आत्म प्रवंचना की अवस्था है वो। कि जो सोच रहे हैं केवल एक काम इंद्रियों को वश में कर रखा है ज्ञान और योग से और बाकी सबको खुला छोड़ रखा है, तो ब्रह्मचर्य सद जाएगा, ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य साधना है, उसके लिए कंट्रोल ऑफ एपिटाइट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद ब्रह्मचर्य। जब तक जिह्वा को वश में नहीं किया जा सक किया जाएगा, तब तक रसेंद्रिया जहां वश में नहीं, जनेन्द्रियां तब तक वश में नहीं हो सकती। इसके लिए मूलभूत मौलिक आधार जो है ब्रह्मचर्य का, वो है भोजन पर संयम। जब तक ये संयम नहीं, तब तक ब्रह्मचर्य की कल्पना करना भी स्वप्न मात्र है। जगदीश भाई क्या जो किताब है उसमें चैप्टर 1 भोजन पर मिर्च मसाले के ऊपर करने वाले ब्रह्मचर्य को उपलब्ध नहीं हो सकते। जो कहते हैं कि थोड़ा सा ही तो खाते हैं मिर्च मसाला, मसाला थोड़ा सा ही डाला हुआ है, थोड़ा थोड़ा करते हुए हथौड़ा लगेगा। ब्रह्मचर्य का भोजन जो होगा वो ये सब से मुक्त होना चाहिए। जितना ये सब होगा कर्मेंद्रिया उत्तेजित होगी, उत्तेजना उत्पन्न करने वाले हैं ये सभी। नमक उत्तेजना उत्पन्न करता है शरीर में, मसाले सारे ही मसाले कोई भी हो वो सब कुछ उत्तेजना उत्पन्न करता है। मिर्च चाहे लाल चाहे हरी उत्तेजना उत्पन्न करता है, हरी लाल तो बहुत ज्यादा। जिसको ये सब बहुत ज्यादा खाने की इच्छा है चटपटा, वो कैसे ब्रह्मचर्य की साधना कर सकेंगे। बोनो डाइट आज बाबा ने बोला है, तो जितना उत्तेजना पूर्ण भोजन है, जितना उसमें गरिष्ठ भोजन है, जितना उसमें तेल डाल के उसको स्वादिष्ट बनाया गया है, कोई भी चीज को तेल से प्रोसेस करो वो स्वादिष्ट बनती है। जरूरत नहीं है इस शरीर को, तो कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे। जिसने जिह्वा को वश में कर लिया है, सारी ही कर्मेंद्रिया स्वतः ही वश में हो जाती है। साक्षी रहे और सदा बाप के साथ ही रहे, तो एक एक कर्मेंद्रिय की जांच करो बाबा ने कहा है। कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा न दे, और हरेक कर्मेंद्रिय धोखा दे सकती है। हरेक कर्मेंद्रिय, ये भी नहीं है कि जिसने भोजन को वश में कर लिया, जिह्वा को वश में कर लिया, अगर बाकी साधना नहीं कर रहा है तो भी ब्रह्मचर्य हो जाएगा, ये भी नहीं है। इसमें भी बहुत बड़ा धोखा है। फिर ये आगे की स्टेज है उसकी। जिह्वा वश में हो गई है, परंतु यदि नियम मर्यादाओं का, अगर ज्ञान का चिंतन मनन अध्ययन या योग की साधना और योग का चार्ट अगर नहीं ऊपर बढ़ाया, तो भोजन को वश में करने वाले, जिह्वा को वश में करने वाले संसार में भी कितने लोग हैं जो एक ही प्रकार का मोनो डाइट लेते हैं कोई कोई लोग, तो भी वहां पर ब्रह्मचर्य हो जाएगा ऐसा नहीं है। बहुआयामी ये प्रयत्न है, ये पुरुषार्थ केवल भोजन से संबंधित नहीं है, परंतु हाँ जो सब प्रकार की साधनाएं कर रहा है, ब्रह्मचर्य की साधना में, ज्ञान में भी आगे, योग में भी, तपस्या में भी, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। हमारी जो जीभ है उसे कुछ दिन का अभ्यास चाहिए बस, थोड़े समय के लिए। 10 दिन के बाद टेस्ट बर्ड्स जो है वो चेंज होते हैं। उसको अगर नमक नहीं खिलाओ 10 दिन, तो 10 दिन के बाद उसे नमक की जो रुचि है, जो कि प्राण है ब्राह्मणों का, अगर नमक ही ना रहा भोजन में तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है ये जीवन ही व्यर्थ हो गया। आंखों से तो आंसू भी आ जाएंगे किसी किसी के, क्या यही करने आए थे मधुबन में? खा कर देखो आज के दिन। आज के दिन सभी के लिए अभ्यास, कोई मोमक नहीं, सेंधा विंदा कोई जरूरत नहीं, काला नहीं कोई नहीं, खा कर देखो आंखों से आंसू आ जाएंगे। इतनी पीड़ा होती है, सोचते हैं क्या ये करने आए थे इसीलिए ब्राह्मण बने? परंतु ये कर लिया तो हम वो नहीं रहेंगे जो पहले थे। इंद्रियों पर हमारा संयम बढ़ जाएगा। कर्मेंद्रिय जीत, इंद्रिय जीत, जितेंद्रिय स्वराज्य अधिकारी की जो अवस्था है उसके हम नजदीक होंगे। परंतु ये जो मोह, जो आसक्ति और जो आकर्षण है, ये ऐसा है कि इसका वर्णन कहीं बहुत ज्यादा नहीं आता है मुरलियों में। इसके लिए आया भी तो कोई एक आध लाइन कहीं आएगी और वो छूट गया। बाकी और ब्राह्मणों को बहुत सारी चीजें करने को है, सेवा इतनी करने को है, इसके ऊपर कहाँ कब ध्यान देंगे। परंतु ये भी एक साधना है। महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में सत्य के प्रयोग में एक चैप्टर कंप्लीट इसके ऊपर है, कंट्रोल ऑफ पैलेट। सत्य की साधना तब तक नहीं हो सकती जब तक भोजन को वश में नहीं किया जाए। और जैसे जैसे योगी बनते जाएंगे पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें जो हम खा रहे उसकी तो शरीर को आवश्यकता ही नहीं थी, वो केवल भोग की वस्तुएं हैं, जो हमने समझ रखा है ये जरूरी है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। ब्रह्मचर्य का जो साधक है इन द लॉन्ग रन उसको पता चलेगा इस संसार की बहुत ही थोड़ी वस्तु है जो आवश्यक है और जिससे शरीर बहुत ही अच्छी तरह से चल सकता है और शरीर की ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। अभी शरीर बहुत भारी है क्योंकि उसको इतना खिलाया जा रहा है, इतना खिलाया जा रहा है कि उसको आवश्यकता ही नहीं है उतनी चीजों की। इसके लिए योग में भारीपन, शरीर में भी भारीपन और सबसे बड़ी बात रोग, कितने ही प्रकार के रोग, कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी हार्ट की बीमारी, कभी शुगर की बीमारी, कभी बीपी की बीमारी, कभी इसकी बीमारी, कभी उसकी बीमारी, ये जितनी भी बीमारियां हैं एक ही कारण है, केवल एक कारण, गलत आहार। अगर आहार को ठीक कर लिया जाए तो सारी बीमारियों से व्यक्ति स्वतः ही मुक्त हो जाएगा,
टोटली मुक्त हो जाएगा।
साक्षी रहे और सदा बाप के साथ ही रहे, हर बात में बाप याद आए। महान आत्माएं भी नहीं, निमित्त आत्माएं भी नहीं, लेकिन बाबा ही याद आए। ये जो सफर है अकेले का है, एकला चलो रे, यहाँ किसी को साथ में लेकर नहीं चलना है। संगठन का अपना महत्व है, संगठित योग, संगठन में योग, संगठन में ज्ञान चर्चा, संगठन में सेवा, संगठन में स्नेह, संगठन में सहयोग, वो सब अपना अलग महत्व है। परंतु यहाँ साथी तो बाबा कह रहे हैं, सीधा वाक्य है यहाँ पर। कोई भी बात आती है तो पहले बाप याद आता है, निमित्त आत्माएं याद आती है, सदा एक बाप दूसरा ना कोई, आत्माएं सहयोगी है लेकिन साथी नहीं, साथी तो बाप है। स्पष्ट वाक्य विदाउट एनी कंफ्यूजन, निर्विवाद। इसके लिए किसी को भी साथी बनाने का संकल्प नहीं करना, रुचि रचना बहन। या सोच रहे हो कोई साथी तो ना बने, कोई भी मनुष्य साथी, इट इज द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। रोम का एक दार्शनिक है प्लूटोनियस, उसने कहा है इट इज द फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। ये यात्रा है, ये उड़ान है एक की एक की तरफ, किसी को साथी नहीं बनाना। भीड़ से क्या लेना देना है पुरुषार्थ का, क्या भीड़ को साथ में लेके चलना है? स्व परिवर्तन करना है, खुद का परिवर्तन करना है, हर व्यक्ति को, हर आदमी को अपने साथ कुछ करना है। यहाँ पर अपनी मनोदशा, अपनी मनोवृत्ति, अपने भाव, अपने संकल्प, अपनी कल्पनाएं, अपनी वासनाओं को वश में करना है, अपने आप को नियंत्रित नियंत्रित करना है, ना कि दूसरों को। दूसरे सहयोगी साथी, दूसरे सहयोगी या मददगार सलाहकार थोड़े बन सकते हैं, परंतु यात्रा अकेले को ही करना है। टू वेज डाइवर्ज्ड इन द वुड्स एंड आई चोज द वन विच इज लेस ट्रेवल्ड एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। दो मार्ग थे, मैंने वो चुना जिसमें बहुत कम लोग चलते थे और इसी की वजह से सारा फर्क है। इसके लिए ये यात्रा अकेले की है, साथी तो बाप है बस। सहयोगी को अपना साथी समझना यह रॉन्ग है। तो सदा सेवा के साथी, लेकिन सेवा में साथी बाप है, निमित्त सहयोग देते हैं, ऐसा सदा स्मृति स्वरूप हो। किसी देहधारी को साथी बनाया तो उड़ती कला का अनुभव नहीं हो सकता, उड़ नहीं सकते, बंधन है। कोई गिफ्ट दू, सौगात दू, खिलाऊ, कल था मुरली में, देते हैं ना एक दूसरे को, गिफ्ट दो, सौगात दो, थोड़ा कुछ खाने का बनाए तो उसको भी थोड़ा दू। इसलिए हर बात में बाबा बाबा याद रहे। कुमार डबल लाइट है, ये पॉइंट यहाँ पूरी हुई। कुमार डबल लाइट है, संस्कार स्वभाव का भी बोझ नहीं, व्यर्थ संकल्प का भी बोझ नहीं। इसको कहा जाता है हल्का, जितना हल्के होंगे उतना सहज उड़ती कला का अनुभव। अगर जरा भी मेहनत करनी पड़ती है तो जरूर कोई बोझ है, तो बाबा बाबा का आधार ले। कल भी कहा था दो बार मुरलियों में, सारे दिन भर बाबा बाबा करते रहो, आधार ले उड़ते रहो, यही अविनाशी आधार है। इसका अर्थात संसार के जो भी आधार है विनाशी है, आदि अंत वाले है, बिगिनिंग एंड एंड वाले है, उसकी शुरुआत है और उसका अंत है। कल कहा था ना हर एक संबंध जो है वो उसकी आयु है एक, वो उतना ही रहेगा, यहां से चालू है यहां से खत्म। ये एकमात्र संबंध है जो हमेशा के लिए है। इसके लिए क्या सुना, हर कदम में साक्षी। साक्षी वह रह सकते हैं जो जो साक्षी है, केवल वही बाबा के साथीपन का अनुभव कर सकते। एक तो ये बात, दूसरी साक्षी की परिभाषा, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे, कर्म करते हुए कर्मेंद्रियों के बंधन से परे, और उसके बाद में आंखें जो धोखा देती है, इस पर भी थोड़ा कार्य करना है। और आंखें अर्थात आत्मा, आत्मा में जो रस है देह को देखने का, उस रस को नष्ट करने के ऊपर काम करना है। उस काम में सर्वप्रथम कार्य है देह के वास्तविक स्वरूप को देखना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, जन्म को दुख, जन्म व्याधि जरा मृत्यु, इनका निरंतर चिंतन करते रहना, तो देह के प्रति थोड़ा सा वैराग उत्पन्न होगा। इतिहास में कितने ही ऐसे उदाहरण है, रानी पद्मावती, चित्तौड़ की रानी पद्मावती, अलाउद्दीन खिलजी, सुना है सभी ने कहानी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कुछ नहीं किया, चित्तौड़ को कितनी बार घेरा, परंतु राजा रतन सेन से दोस्ती की, उससे कहा कि मुझे केवल पानी में देखना है, और पानी में एक बार देखा तो भी कामांधता पूर्ण नहीं हुई। फिर उसके बाद कितने ही प्रयत्न किए, एक बार तो राजा रतन सेन को बंदी भी बना लिया ताकि वो आ जाए, परंतु वो दो सिपाहियों ने उसे, बादल और दूसरा कौनिक, उन्होंने उस राजा को छुड़ा लिया। कितनी बार चित्तौड़ पर आक्रमण किया, और अंतिम जो आक्रमण है जिसमें राजा रतन सेन मर गया, परंतु उसकी चिता में वो दो रानियां, उसमें रानी पद्मिनी भी थी, वो भी उसमें क्या कहते हैं उसको, जौहर। और जब अलाउद्दीन खिलजी वहां आया तो क्या था, केवल राख। ये परिणाम है काम वासना का, कभी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। और इतने सारे, कितना ही चित्तौड़ की भूमि रक्तपात हुआ, ऐसा घमसान। वैसा ही सोमनाथ का मंदिर क्यों लूटा गया, कैसे लूटा गया सोमनाथ का मंदिर, वहां का जो राजा था राजा भीमदेव, वहां की जो देवदासी थी सोमनाथ के मंदिर की, उसके रूप और नाम में ऐसा फंसा था कि बात मत पूछो। यहां तक कि उसी मंदिर का जो मुख्य पुरोहित था, महापुरोहित, वो भी उसी देवदासी के प्रेम में फंसा हुआ था, ईर्ष्या हुई। और इसके लिए वो पुरोहित मोहम्मद गोरी से जाकर मिला, और वह जो गुप्त मार्ग जो सोमनाथ की ओर आने वाला था, वो गुप्त मार्ग किसी और को पता नहीं था, वो उसने खोल दिया, और उसी द्वार से मोहम्मद गोरी ने प्रवेश किया, और वो फिर से खजाना लूटा। पहले तो मोहम्मद गजनवी ने लूटा था 1024 में, ये वापिस 1293-94 फिर से उसको खजाने को लूटा। तब से भारत का पतन हुआ, विधर्मी दासता का शिकार हुआ भारत, वो भी क्यों, वासना के कारण। उस पुरोहित ने सोचा कि मैं बदला लूं राजा भीमदेव से, पर उसे ये इसका अंदेशा नहीं था कि मोहम्मद गोरी जो आ रहा है वो उसको भी नष्ट करेगा और सोमनाथ के मंदिर को भी लूट के ले जाएगा। कहां से कहां, सूक्ष्म से सूक्ष्म कारण है परंतु घातक परिणाम है, और दासता की बेड़ियों में भारत बंधा अगले 700 साल तक।